निकी के सफ़ीर, इसमें से दूसरी कहानी है पेज 26, राहे हक से फरार का इंजाम। पहले एक मेन थीम समझा देती हूँ ताकि फिर आप सुनते वक्त उसको देखें कि बस सिर्फ अल्लाह ताला बंदे को नेमत देता है लेकिन बंदा उसकी कदर नहीं करता तो फिर अल्लाह उसे छीन लेता है। यानी असल में ये नाशुक्री की अलामत है कि हिदायत जैसी नेमत भी जब मिल जाए लेकिन अंदर का किब्र और राउनत बंदे को उस नेमत से दूर कर देती है। इसे राहे हक को अपनाने का बहुत शौक था। वो इस्लाम की खूबियां देखकर खुशी से फूले न समाता था। मुझे आज ही इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, ये वाकई बहुत अजीम मजहब है। इसका नाम था जबला बिन अहम, गस्सान कबीले का सरदार था। ईमान की बशाशत इसे इस्लाम कबूल करने पर उभार रही थी। इसने इस्लाम कबूल कर लिया और खलीफा वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और दूसरे मुसलमान जबला बिन अहम के कबूले हक़ की खबर पाकर बेहद खुश हुए। यानी ये अपने वक्त का बादशाह था और ऐसे ही जैसे आज के दौर में कोई मशहूर शख्स मुसलमान हो जाए या इस्लाम कबूल करना चाहे तो सभी खुश होंगे। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाबन लिखा, तुम्हें वो तमाम तर हकूक़ को तहफ़ुज़ात हासिल है जो इस्लाम ने हमें दिए हैं। इसके साथ ही अब तुम पर वो तमाम अवामिर व नवाही भी लागू होंगे, यानी डूज एंड डोंट्स, जिसका इस्लाम ने हमें पाबंद किया है। उमर के इस जुमले से क्या पता चलता है कि जब कोई कलमा पढ़ता है ना तो उसको उस वक्त बता देना चाहिए कि अब तुमसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, अच्छी बातें भी और दूसरी बातें भी। और मरूब नहीं थे हज़रत उमर उससे। जबला अपने 500 शख्स सवारों समेत निकला। जब वो मदीना के करीब पहुंचा तो इसने सोने के तारों से मुरस्सा शाहाना लिबास पहना, सर पर शाही ताज रखा जिसमें नहायत बेशकीमत हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे, अपने लश्कर को भी खुशनुमा लिबास पहनने का हुक्म दिया। फिर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ। मदीना के सब लोग, बच्चे बूढ़े हत्ता कि औरतें भी घरों की खिड़कियां खोलकर इसकी तरफ झांकने लगीं। वो उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में पहुंचा। आपने उसे खुश आमदीद कहा और अपने करीब बिठाया। हज का मौसम आया तो अमीरुल मोमिनीन हज के लिए निकले। जबला ने भी आपके साथ हज करने का इरादा जाहिर किया। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहे थे, जबला भी हमराह था। बनू फजारा के गरीब आदमी का पैर जबला के आज़ार पर आ गया। जबला ने इसे शोलाभर आंखों से देखा और इतने ज़ोर का तमांचा मारा कि इस गरीब की नाक की हड्डी तोड़ डाली। ये मुकदमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की अदालत में पहुंचा। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जबला को तलब किया और पूछा, जबला तुमने दुराने तवाफ अपने भाई के चेहरे पर थप्पड़ क्यों मारा? इस बेचारे की नाक की हड्डी टूट गई है। जबला इतराते हुए बोला, इस कमीने ने मेरे आज़ार को रौंदा, अगर बैतुल्ला की हुरमत का एहसास ना होता तो मैं इसकी गर्दन तन से जुदा कर देता। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बोले, तुमने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है लिहाजा अपने इस भाई को राज़ी करो वरना तुमसे बदला लिया जाएगा और तुम्हारा ये भाई तुम्हारे चेहरे पर इसी तरह थप्पड़ मारेगा जिस तरह तुमने इसे थप्पड़ रसीद किया था। जबला, जनाब उमर, मैं गस्सान का बादशाह हूँ, भला ये आम बाजारी आदमी मुझसे कसास लेगा? उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बोले, यकीनन ऐसा ही होगा, इस्लाम ने तुम दोनों के दरमियान मसावात कायम की है। अगर तुम में से किसी को दूसरे पर बर्तरी हासिल हो सकती है तो इसका वाहिद मेयार तकवा है। कहाँ है ये बात कुरान में? सूरह हुजरात, इन अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, तुम्हें सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो कि सबसे ज्यादा मुत्तकी है। जबला बोला, मुझे ऐसे इस्लाम की ज़रूरत नहीं, मैं दोबारा ईसाई हो जाऊंगा। उमर बोले, इस्लाम का हुक्म है कि जो इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाए इसे कत्ल कर दो, अगर तुमने ईसाइयत कबूल कर ली तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। जबला, अमीरुल मोमिनीन मुझे कल तक के लिए मोहलत दीजिए ताकि मैं इस बारे में गौर कर लूँ। उमर बोले, जो तुम्हें कल तक मोहलत है। जब रात का सन्नाटा छा गया और लोग नींद की आगोश में खर्राटे लेने लगे, जबला चुपके से उठा और अपने लश्कर समेत मक्का से भाग गया। वो कुस्तनतीनिया पहुंचा और ईसाइत कबूल कर ली। वहाँ इसने कुछ अरसा गुजारा, जिंदगी की रौनकें खत्म हो गईं, ईमान की हिलावत यानी मिठास से जो तरोताजगी पैदा हुई थी वो खत्म हो गई, दिल मुरझा गया, हसरत और अफसोस के जज्बात इसके दिलो दिमाग पर छा गए। इसे अपने ज़माने इस्लाम की हसीन और दिल नशीन यादें तड़पाने लगीं, नमाज की हिलावत और रोज़े की चाशनी रह रह कर याद आ रही थी। वो रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने और दीन इस्लाम को छोड़ने पर नादिम हुआ। जबला बिन अहम मारे पशेमानी फूट फूट कर रोया और ये अशार पढ़े, तनसरतिल अशराफ़ु मिन आरिल लतमतिन वमा कान फीहा लौ सबरत लहा दररु। मुअज़्ज़ज़ लोगों ने एक थप्पड़ के आर से ईसाइत इख्तियार कर ली, अगर वो सब्र कर लेते तो इसमें कोई नुकसान नहीं था। ये किसको कह रहा है मुअज़्ज़ज़? खुद को कह रहा है, अपने आप के ऊपर। अब उसको अफसोस है, हसरत है कि ये मैंने क्या किया और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और फिर इसके बाद अगले शेर में वो क्या कहता है, तक नफुनी मिनहा लिजाजों व नखवतु व बेसु लहल आइन सही हता बिल आउरी। घेर लिया मुझे हठ धर्मी और तकबर ने, और मैंने उसके लिए सही आंख को काने पन के बदले फरोख्त कर दिया। यानी अगर उस दिन थोड़ा सा सब्र कर लेता तो नबीना ना होता, यानी हिदायत से दूर ना होता। फया लईता उम्मिलम तलिदनी व लईतनी रजात इलल कौल लज़ी क़ाल ली उमरु। काश मेरी माँ मुझे जन्म ही ना देती, काश मैं इस बात को कबूल कर लेता जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने मेरे लिए कही थी। क्या कही थी? उससे बदला दिलवा लो। वया लैतनी अर अल महादा बिकफ़रतिन व कुन तो असीरु फ़ी रबीयत व मुदर। काश मैं जंगलों बियाबान में ऊँटनियाँ चराता और मैं रबिया और मुदर में चल फिर रहा होता। ये दो कबीलों के नाम थे। यानी मुझे ये बादशाहत और सरदारी ना मिलती और मैं एक आम शख्स होता। वया लई तली बिशामी अदना मई शतिन उजालिस कौमी ज़ाहिब सम्मी वल बसर। काश मेरे लिए शाम में अदना सी गुजरान होती और मैं अपनी कौम में अंधा और बहरा बनकर बैठा रहता। यानी इतनी दौलत से बेहतर था कि मेरे पास थोड़ा सा होता और अपनी कौम में रहता। बाज़ लोग चाहते हैं कि अपने शबो रोज़ दीन इस्लाम के अहकाम के मुताबिक गुजारें, लेकिन तकब्बुर इनकी राख का रोड़ा बना रहता है। इसको हाईलाइट करें। बतर अल हक की वगैम दिन्नास, हक को झुटला देना और लोगों को हकीर जानना, ये है तकबर। इस बिना पर वो शायर इस्लाम की फिर परवाह नहीं करते। असल जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि जब तक आपसे अपनी बड़ाई का एहसास ख़त्म नहीं होगा ना, बात नहीं बनेगी। पजामा अपने टखनों से ऊंचा नहीं रखते, तकबर की बिना पर दाढ़ी नहीं रखते, मुशरिकीन की मुखालफत नहीं करते। वो अपनी ज़ाहरी सज धज को अपने रब की इताअत गुजारी के मुकाबले में ज़्यादा काबिले तरजीह समझते हैं। इसी तरह बाज़ औरतें पर्दे के मामले में हमेशा सुस्ती और काहली से काम लेती हैं, हर वक्त अपने हुस्न की ज़ाहरी आराइशो ज़िबाइश और नुमाइश ही में लगी रहती हैं। भड़कीले लिबास पहन कर इतराती हैं, अबरुओं के बाल नोच कर और तंग लिबास पहन कर अपने जिस्म के नशेबो फराज की नुमाइश करती हैं और अपने रब की नाफरमानी में मशगूल रहती हैं। जब इन्हें नसीहत की जाती है तो तकब्बुर से सर झटकती हैं और सरकशी और नाफरमानी करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी कल्बिही मिसकालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस 147, आप देख सकते हैं। और ये जो वाक़या हमने पढ़ा है ये तारीख़ दमश्क किताब का नाम है, जबला बिन अलहम अलग़स्सानी, उसके बारे में ये वाक़या उस किताब में मिलता है। तो क्या पता चला फिर इससे आपको मुझे, तकबर नहीं करना। आप देखिए कि अल्लाह ने इस शख्स को हिदायत का रास्ता दिया था, दिखाया भी था, चला भी, चल भी पड़ा। मुझे इसको पढ़ते हुए बिल्कुल सूरह बकरा के शुरू की वो आयत याद आ रही है जिसमें क्या हुआ, किसी को याद है, मसलहुम كمثل الذي استوقد نارا فلما ذات ما حوله ذهب الله بنورهم. کیا پتہ چلا کہ ہدایت کی جو جلتی ہے کچھ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے یو لائک اسلام بٹ آپ اسلام کی امپلیمنٹیشن اپنے اوپر نہیں پسند کرتے. چونکہ یہ بادشاہ تھا تو اس کے دل میں وہ بادشاہی اور آنر تھا, یعنی بیسیکلی ہی وانٹ سم تھنگ ایلس, یہ اپنے لیے سم ایک ڈسٹنگوش قسم کا بیہیویئر چاہتا تھا. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں اور آپ نے کہا انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے عہدے کے مطابق عزت دیا کرو, جب یمامہ کا ایک حکمران تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بنا کر لایا گیا, سمامہ اس کا نام تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات بولی تھی کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے, تم اس کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو. پھر اس کی رسیاں ڈھیلی کیں, 3 دن اللہ کے نبی اس کے ساتھ اچھا کھانا بھیجتے رہے اور اس کو جا کر ملتے بھی رہے, لیکن چونکہ اس وقت اس کے دل میں اسلام سے غصہ تھا تو اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا اور روز اللہ کے نبی آپشنز لیتے تھے اسے کیا کرو گے. تو اس نے کہا اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو آپ بہت اچھے شخص کو آزاد کریں گے, آئی ول بی تھینک فل. تو تیسرے دن اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کس کو چھوڑ دو, جب چھوڑا تو وہ وہاں سے گئے. تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھا تو غسل کیا ہوا تھا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیوں؟ کہا کہ 3 دن سے جو میں نے مسلمز ایٹیچیوڈ دیکھا ہے, صحابہ کا مسجد میں آنا, عبادت کی طرف لپکنا, اور سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ معاملہ تھا, اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. پہلے دل نفرت سے بھرا ہوا تھا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا, پھر دل میں محبت آئی تو اللہ نے سب کچھ اچھا کر دیا. اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں اسلام کے لیے کیا کروں. تو آپ نے بس یہی کہا کہ تم اپنے علاقے میں جاؤ گے تو وہاں بات کرو. اس نے کہا نہیں, میں ایک گندم کا ایک دانہ بھی جو ہے وہ مکہ والوں کو نہیں دوں گا, کیونکہ اس کے قبیلے سے جو یمامہ علاقہ تھا وہاں سے کراپس جاتی تھیں اور فصلیں جو تھیں تیار ہو کر مکہ والوں پاس جاتی تھی. جب انہوں نے روک دی تو مکہ میں تو اور ہی کھانے کو قحط پڑ گئے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ سمامہ سے کہیے کہ ہمارا رسد کھول دیں, تو اللہ کے نبی کی سفارش پہ یہ ہوا. تو کیا پتہ چلتا ہے, اپنے اندر سے تکبر نکالنا, اور بلیو می یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ جو آپ پورا پڑھ رہے تھے نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کتنا بھی قرآن پڑھ لیں, نمازیں بھی پڑھ لیں, تہجدیں بھی پڑھتے ہیں, سیلف پریسٹیج سے نہیں نکل پاتے. ذات کا بت, ہم کیا, میں کون, میری بات, میرا یہ. اور اسلام آپ کو پہلے توڑتا ہے. یعنی مثلا اگر ہم نے تو ابھی پڑھا ہی کچھ نہیں, جمعہ جمعہ 8 دن تو بھی ہوئے میں بھی سیکھتے ہوئے, اپنے آپ کو پوچھیں, آپ اپنا ایک سیلف انالیسس کریں, سب سے زیادہ مجھے اپنے بارے میں کیا فیل ہوتا ہے. یہ بہت اہم ہے, یہ بالکل وہی بات ہے جو اکثر ہم کرتے ہیں نا کہ اللہ اکبر اور انی اصغر. جبلا کو اللہ اکبر سمجھ آ گیا تھا بٹ انی اصغر سمجھ نہیں آیا. اور دوسری بات اس میں ایک اور بھی سمجھنے کی ہے, اپنا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا تھا اس کا, اللہ سے اس کو پیار تھا, لیکن لوگوں کے ساتھ معاملے میں اریٹیٹڈ ہو گیا. اور اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, میں کا احساس تھا. بالکل یہ بھی اچھی بات ہے, آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کے اندر سے ابھی تک میں کا احساس نہیں نکلا. اور ایک یہاں سے بہت ہی خوبصورت بات نوٹ کریں, جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں آپ ان سے بہت بڑی بڑی باتیں ایک دم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بلیو می کئی لوگ ہیں مسلم ہونے سے پہلے شرابی تھے, ابھی بھی نشہ ٹوٹتا ہے, ابھی بھی ان کو عادت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بھی ہے. بالفرض آپ بالفرض ان کو ایک گھونٹ پیتا دے کے فتویٰ دے دیں, تم پہ 80 کوڑے اور تمہیں تو حد لگے گی اور تم نے شراب پی اور تمہاری تو عبادت قبول نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو معاملہ کرے گا نا, میرے آپ کے معیار نہیں ہے اللہ کے نمبر دینے کے, واللہ اللہ تعالیٰ کل یعمل علی شاکلتہ, اس کی شاکلہ دیکھے گا, کہاں وہ بندہ براٹ اپ ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اکثر دیتی ہوں نا کہ فورتھ لین سے جس نے ایگزٹ لینا ہے تو وہ پہلی لین, دوسری, تیسری, بہت سارے خطروں میں سے آئے گا نا, اس کے ایگزٹ لینے میں ٹائم لگے گا. اور جو بالکل ہی فرسٹ لین میں تھا اس کے لیے ایگزٹ لینا کے ایک انڈیکیٹر دیا اور نکل گئے. کچھ لوگ ہدایت کے لیے جب آتے ہیں نا, یا جب اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے, تو وہ فورتھ لین سے آ رہے ہوتے ہیں. یعنی مثلاً لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے بھی چینج نہیں ہوئے, تو میں کہتی ہوں ذرا دیکھیے تو صحیح, اس سے پہلے تھے کیا, ये कपड़ा जितना गंदा है ना, आप ये एक कपड़ा बहुत साफ सुथरा है और एक इसके साथ बहुत ही दाग वाला कपड़ा, आप दोनों को सेम मशीन में सेम टेम्परेचर सेम वक्त के लिए सोप डाल के डाल दें, ये और तरह से निखरेगा, जिसमें दाग पक्के थे वो इतना साफ नहीं होगा। हमें सब्र करना चाहिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। गिव पीपल सम टाइम। आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपकी बीवी, आपके दोस्त साथी, गिव देम सम टाइम। और ये चीज़ वक्त के साथ आती है, अपने अंदर ठहराव लाए, झट झट टक टक फतवे फतवे ये वो सबको कर करा के फारिग होके आप घर आ गए जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर, ये नहीं होगा। सॉरी, आप जन्नत में अकेले नहीं रहेंगे। हम तो सबको किट कैट ख़त्म कर करा के अकेले जन्नत में जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी जन्नत में आपको दिखेंगे कि यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग देम इन जन्नत। बिलीव मी, लिख लें, अल्लाह ने बहुत सारों को लेके जाना है। कभी मायूस ना, बी द एम्बेसडर ऑफ गुड डीड्स। आपका मेरा काम ही है, कभी किसी से मायूस ना, कभी किसी की खैर से मायूस ना। और आप देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह, वो कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल किसको चुन ले, कब चुन ले, कहाँ चुन ले, नो वन नोज। और जो चीज़ मैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ ना, वो साथियों की तड़प। रोता है कोई, आम बंदे लग रहे होते हैं देखने में, अभी नया नया सफ़र है, कोई पहले पारे पे, कोई दूसरे पे, लेकिन उनके आंसू, उनके रोने और उनकी, मतलब मैं कहती हूँ कि आप कुछ बनेंगे, मैं प्रिडिक्ट करके जा सकती हूँ, यू विल बी समथिंग। जो आपकी तड़प है अगर ये कायम रही ना तो देखेंगे। और मैं अब इतना ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से, वो एक ये कोई जादू नहीं है या कोई राज नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है या एक्सपीरियंसेस है। मैं 10 शहरों से होके आती हूँ ना, तो मुझे 10 में से 10 का अंदाज़ा होने लग जाता है कि आगे किधर क्या होगा। और बस सारे की वजह कोई एक शख्स होता है हर जगह का, और कहीं कोई भी नहीं होता, कहीं एक है, यानी कहीं लगता है बस अब 3-4 साल बाद दोबारा ही आएंगे तो एक दर्स होगा, और कहीं ऐसे लगता है कि देखेगा अब इधर नेकियों का पौधा लगेगा। और मैं हमेशा अपना वक्त उन लोगों के साथ गुजारना पसंद करती हूँ। आई लव टू बी अमंग दोस्त के जो बुराई छोड़ कर आए, जो गिल्ट के साथ आते हैं। आई लाइक गिल्टी पीपल। मुझे मुतकब्बिर नहीं पसंद, जिनको अपनी नेकियों पे बड़ा मान है। यकीन करें, एक से दूसरा कोर्स कोई कर ले और एक दूसरे प्लेटफॉर्म वाले बंदे को देखते सलाम नहीं करते, स्माइल नहीं देते। मैंने इस ट्रिप में देखा किसी हमारे साथी ने, कोई ऐसे लोग जो किसी और प्लेटफॉर्म से आए हुए थे किसी एक जगह पे, तो अब स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है ना, बड़े जोर से आइए देखिए हमारी उस्ताजा ये वो, मैंने इनके चेहरे टर्न होते देखे। अल्लाह नोज दी बेस्ट, उनके दिल में दिमाग में शायद कुछ और होगा, लेकिन अपेरेंटली मैंने उनके चेहरे पे नो फीलिंग और स्पार्ट चेहरा देखा, कि वो झींप गई और उन्होंने देख लिया कि मैंने भी इनको देखा, तो मैंने ऐसे आराम से उनको किट्स होके, ये एक्साइटमेंट में मुझे मिलवा रही थी किसी से, लेकिन वो खुद भी पढ़ाने वाले थे, उनको मुझसे नहीं मिलना था। समझ आ रही है बात आपको? वो तकब्बुर जो नेकियां करके आए, वो ज्यादा डेंजरस है उस गिल्ट से जो गुनाह के बाद आता है। और अल्लाह को भी ये टूटे हुए दिल ही अच्छे लगते हैं, इन्हीं को जोड़ता है अल्लाह। तो कभी किसी से नफरत ना करें, कभी किसी को ये ना कहे कि ये नहीं सुधरेगा, इसको नहीं बुलाना, ये मेरी दोस्त तो बेकार है, इसने तो ये हो जाना, इसको तो ये होगा, आपको क्या पता, आप और मैं मुफ्ती तो नहीं है ना। अच्छा, अल्लाह ताला कभी किसी को ज़ाया नहीं करता। हदीस में आता है कि इस्लाम आदमी को गलाता है, मेल्ट करता है, जैसे कोई धात को आग में डालकर उसको मेल्ट करते हैं ना, फिर होता है। आप अपने आप को देखें, इस वक्त आप में से हर एक अपने आप को जबला समझे, अकड़ है मेरे में, खुद को बड़ा समझती हूँ। यानी जो कॉमन थिंग मुझे दूसरों से मिलकर कमेंट्स में मिलती है, वो कहती हैं कि आप हमें अपने जैसी लगती हैं। हमारा तो ख्याल है कि जो पढ़ते पढ़ाते लोग हैं वो बहुत, मैंने कहा वो क्या होते हैं मुझे भी तो बताएं, हमारे सिर्फ रोल फर्क है। अगर मैं बोलने वाली हूँ तो आप सुनने वाले, आप बुलाने वाली हैं मैं आने वाली हूँ, दैट्स इट। मैं अपने आप को ऊपर नहीं समझती, कल बहुत मुख्तलिफ रिजल्ट होंगे क्यामत के दिन। हाफिज़तुर राफिया, क्यामत के दिन का एक काम है, ऊंचों को नीचा, नीचों को ऊंचा कहेगी। आप ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले हो सकते हैं, कल रो रहे हो वहां बैठे, और कई बेचारे दरवाजे पे जूतियां सीधी करने वाले आपसे पहले जन्नत में चले जाएंगे। तो कभी तकबर ना करें, कभी तकबर ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अपने से पहले, अपने आगे हजरत बिलाल के कदमों की आवाज़ सुनी थी। ज़रा इमेजिन करें, वो किसी ने चंद दिन पहले बड़ा प्यारा एक जुमला भेजा, ज़रा इमेजिन तो कीजिए उस रात बिलाल को नींद कैसे आई होगी जिस रात नबी ने कहा होगा कि बिलाल मैंने आपके कदमों की चाप सुनी है। तो बी द बेस्ट ऑफ गुड डीड, अल्लाह ने काले हबशी को चुन लिया, बिलाल को चुन लिया, अबू जाहल जो खूबसूरतियाँ रखता तो उसको नहीं चुना। तो दिल साफ कीजिए, आपके अंदर से सब सेल्फ प्रोजेक्शन ख़त्म, मैं मेरा नाम मेरी जात मेरे, आप अच्छे कपड़े भी पहने फिर भी ना ये कहें कि लोग आपको अच्छा कहें, खूबसूरत दिखने के लिए या लोगों को जलाने कुड़ने के लिए नहीं पहनना, ना कुछ करना, घर बनाए सजाएं इसलिए नहीं बनाना कि लोग इसका घर कितना प्यारा है। आप कोई अपना खुशी फन दिखाते हैं, शो करते हैं, आप अपनी कोई स्किल्स लाते हैं, ये नहीं कहना कि मुझे भाई मेरा जिक्र ना करना, अदरवाइज तुम जो देखना है तो देख लो। यानी जब तक आपके अंदर से अपनी जात का बुत नहीं टूटता ना, तब तक आप दूसरों को खैर नहीं दे सकते।
से पहले खुद ही एहसास करना।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि खुद को एहसास हो गया ना, इसको भी तो एंड पे अपनी गलती का एहसास हुआ ना। अनदमु तौबा, अल्लाह ताला उसकी माफ़ कर देता है, कबूल कर लेता है। यानी इनका वाक्या आप और भी जगहों पे पढ़ेंगे ना, तो इसमें और भी आपको कई चीज़ें मिलेंगी बाद में। यहाँ तो हम चूंकि इसको एज अ स्टोरिकल पढ़ रहे हैं ना, यहाँ असल में इसके एंगल से हम कह दें तो वो रिग्रेट है, कि उनको रिग्रेट था, और जो शर्मिंदा हो जाए अल्लाह उसको ज़रूर माफ़ करता है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।